بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ناظرین. شمائلہ زینب آج پھر ایک بار آپ کا اپنا پسندیدہ گھرانہ پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے، اور آپ تمام ناظرین کو آپ کے اپنے گھرانہ پروگرام میں موسٹ ویلکم اور خیر مقدم پیش کرتی ہے. ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ ہمیشہ کی طرح خیریت سے ہوں گے اور ہنستے مسکراتے چہرے آج بھی ہمارے پروگرام کا انتظار کر رہے ہوں گے. ناظرین، آج ہم جس خوبصورت ٹاپک پر گفتگو کرنا چاہیں گے وہ ہے صداقت کی اہمیت، سچ بولنے کی اہمیت. اور یہ ٹاپک ہم نے آپ لوگوں کی تجویزات اور آپ لوگوں کے مشوروں کے مطابق اور معاشرے کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے چنا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پچھلے پروگرام کی طرح آپ ہمارے اس پروگرام میں بھی ہمارا پورا ساتھ دیں گے. ناظرین، صداقت اور راستگوئی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ایمان کا معیار قرار دیا گیا ہے. سچ بولنے والا ہمیشہ سرخرو اور سربلند ہوتا ہے. جو شخص سچ بولتا ہے، خداوند متعال اس کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی خداوند متعال اپنے سچے بندوں کے ساتھ رہتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صداقت اور راستگوئی جنت کی چابی ہے. ناظرین، اسی خوبصورت موضوع پر باقاعدہ گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو اپنے گھرانہ پروگرام میں موسٹ ویلکم اور خیر مقدم پیش کرتی ہوں. ناظرین، ایسی خوبصورت موضوع پر، صداقت اور سچائی جیسے خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ خیر النساء صاحبہ. تو آئیے ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جی محترمہ خیر النساء صاحبہ، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کیسی ہیں؟ خیریت سے؟
بس اللہ کرم ہے، آپ لوگوں کی دعائیں شامل ہیں.
جی، بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. آپ کو تمام ناظرین کی طرف سے اور سحر عالمی نیٹ ورک کی ٹیم کی جانب سے اس گھرانہ پروگرام میں موسٹ ویلکم اور خیر مقدم پیش کرتی ہوں.
اور آپ جتنے بھی دیکھنے والے ناظرین یا ویورز ہیں، ان سب کی خدمت میں بھی سب سے پہلے میں سلام عرض کرتی ہوں. پھر اس کے بعد آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں دعوت دی اور یہاں مجھے بلایا. اور
جی خیر النساء صاحبہ، آج ہم جس خوبصورت ٹاپک پر آپ چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے گفتگو کریں، وہ خوبصورت ٹاپک ہے صداقت، یعنی سچائی، سچ بولنا، سچ بولنے کی اہمیت کیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں کچھ بتائیں. کہ خود سب سے پہلے میں جو سوال آپ سے کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ خود سچ بولنا یا صداقت اور راستگوئی جو ہے وہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خداوند متعال کے بابرکت نام سے میں اپنے اس گفتگو کا آغاز کرتی ہوں کہ خود آپ دیکھیں کہ صداقت کا جو لفظ ہے، خداوند متعال اپنے قرآن مجید میں بھی اس کو ارشاد فرماتا ہے کہ قال اللہ حاذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانحار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم. کہ جس طرح اس آیت میں ہم نے یہ سنا کہ خداوند متعال نے صدق جو لفظ استعمال کیا ہے، سچائی اور صداقت کے بارے میں، اگر ہم اس کے معنی دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صداقت کے معنی یعنی وہ واقعہ جو جس کے بارے میں ہم خبر دے رہے ہیں، کسی سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہماری بات اور وہ واقعہ جس کے آپس میں جو ہے اس کے درمیان میں اگر مطابقت ہو تو اسے کہیں گے صدق، صداقت. اور اگر وہ اس کے درمیان میں کوئی مطابقت نہیں ہے، واقعہ کچھ اور، حقیقت کچھ اور، لیکن ہم جس کے بارے میں جو خبر دے رہے ہیں وہ اگر اس سے بالکل مطابقت نہ رکھے، یعنی اس کے متضاد ہو، اپوزٹ ہو، تو اسے کہیں گے ہم کز. تو یہ دیکھیں، اگر اکثر ہم نے یہ سنا ہے کہ جو ہے صداقت جو ہے گفتار میں ہم نے بہت ہم یہ سنتے ہیں کہ انسان کو سچ بولنا چاہیے،
ہمیشہ سچ بولنا چاہیے،
اور بہت زیادہ تاکید ہماری آیات اور روایت کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ सच्चाई जो है अकीदे में भी है हमारे है, कि
जी
जो आप जैसा आपका एतकाद जिस पर है और वो जाहिर जिस जैसा आपका किरदार है, उस एतकादात में और जो आपको जो जाहिरी अमल और किरदार है वो जो है उनके आपस में मुताबिकत हो। इसी तरह अगर आप सच्चाई को देखना चाहें कि अकीदे के साथ साथ एक गुफ्तार में भी है, जो अभी आप लोगों के सामने मैंने जो जिक्र किया,
जी
और जो तीसरी चीज़ ये कि वो अमल और किरदार में है, कि अमल और किरदार के बारे में कुछ इस तरह डिफाइन करूँ आप लोगों के सामने, कि जब हम बहुत सारी बात करते हैं, बहुत सारे वादे देते हैं,
जी
और अक्सर जो है बहुत सारे जिनको पोस्ट अच्छी मिल जाती है वो बड़े बड़े वादे देते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं। अब अमल और किरदार में जब मैदानी अमल में जो आते हैं, अमल मैदान में, तो अब ये देखना होता है कि जो है वो अब उन्होंने का जो करेक्टर है वो कैसा आया, वो जो बात उन्होंने कही है, उस जो करेक्टर जो
अपनी
अब
पोस्ट पे पहुंचने से पहले जो
हाँ
वादे लोगों को दिए
दिए
थे।
हैं,
जी
अब वो उसके मुताबिक है या नहीं। पर
जी
सच्चाई देखिए आप, जिस तरह मैंने आप लोगों के सामने अर्ज किया कि एक अकीदे में भी है, एक दूसरा जो है गुफ्तार में है, वो तीसरा जो अमल और किरदार में
जी
है।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं पर मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर कुरान मजीद चूंकि हमारे लिए एक हम मुसलमानों की वाहिद वो आसमानी किताब है कि जो मौजज़े के तौर पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई और हम सब लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई का काम भी करती है,
बेशक
तो मैं चाहूंगी कि इसी कुरान मजीद की निगाह से अगर आप कोई और आयत जो इसी ज़ैल में आई हों, इसी मौजू के मुकाबले में आई हों, इसी मौजू को बयान कर रही हों, अगर वो हमारे नाज़रीन को बताएं।
हाँ ज़रूर। वैसे तो बहुत सारी आयात ऐसी हैं कि जो जो यानी सरी यानी वाज़े
वाजे
अल्फाज
तौर पर
वाज़े
बयान
तौर
करें।
पर
जी
जो है सदाकत को बयान कर रहे हैं। जो एक आयत अभी जो आप लोगों के सामने मैंने तिलावत की, इसमें खुदावंद ने मुताल इरशाद फरमाता है कि कयामत का दिन ऐसा होगा कि खुदावंद ने मुताल खुद फरमाता है, हाज़ा यौमुन यनफ़ उस्सादिकीन सिदकुहुम, यानी आज का दिन वो दिन वही रोज़ कयामत वो दिन है कि जब जो सादिकीन हैं, जो सच बोलने वाले हैं, जो राजगू इंसान हैं, उनका जो है सच बोलना उनको आज जो कयामत का दिन वो काम आएगा।
काम आएगा, अगर दुनिया में
और
सच बोला
वही सच
होगा।
बोल रहे हैं इंसान तो उसको आखिरत में जाहिर बात तो उसका सिला मिलेगा।
जी
सिला
बिल्कुल,
देखें खुदावंद मुताला ने इस आयत में कितने प्यारे तरीके से बयान किया है कि दो सिले हमें यहाँ पर नजर आते हैं, जो दो पादाश खुदावंद मुताला यूं दे रहा
जो
है
अजर सवाब।
कि
जी
एक तो है कि बहिश्त, एक जन्नत जो उसको खुदा उसके सिले में दे रहा है कि जन्नत है, बहिश्त है, उसमें नहरें बह रही होंगी, और वो खालिदीन अफीहा बदा आयत में
हमेशा उसी
जैसे
में रहेंगे।
हमेशा वो जो है जाविदानगी जो जो खालिदीन के मायने हैं वो हमेशा वहां रहेंगे। और इसके बाद देखें एक तो होती है जाहिरी एक मादी आपको एक सिला दिया जा रहा है, उसके बाद उससे बढ़कर जो एक बात है वो ये है कि जो कुरान ये जिक्र कर रहा है कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हुम, कितनी बड़ी बात है कि खुदावंदे मुताल की खुशनुदी और रिजायत अगर किसी को हासिल हो जाए,
हासिल हो
कि यानी देखें कि वो लोग यानी खुदावंदे
जो खुदा से
मुताल जो
खाते।
सच्चे सच्चों के साथ जो है जो उनसे राजी है, और वो जो सच्चे हैं वो खुदा से भी राजी
जी
हैं। कि अगर हम कुरान में दूसरी आयतों पर भी अगर निगाह डालें, सेम बिल्कुल यही जो आयत है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, सेम यही अल्फाज हैं चार जगह पर और भी इस्तेमाल हुआ है चार मकामात पर, कि जो थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जिक्र करूँ तो बहुत बेहतर होगा। कि एक दफ़ा जब मुहाजरीन और अंसार
अंसार
और वो जो ताबईन, देखें उस ज़माने में कि जब मुहाजरीन और अंसार का जो वाक़ा हमें पता है कि जब मुहाजरीन हिजरत करके जब मदीना गए और अंसार ने वो जो इसार और जज्बा का जो उनके दरमियान के अंदर जो एक जज्बा जो था उसके तहत
जो
उन्होंने जो
जज्बा जो
कुर्बानियाँ उन्होंने
दिखाया। जी
दी, तो उस तहत देखें खुदावंद मुताल ने ये आयत नाजिल की कि والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار واتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم,
जी
कितनी प्यारी बात है, यानी जिन्होंने इतना यानी या देखें हम उनकी अगर हम एक तारीख में अगर हम निगाह डालते
जी
हैं
जी
तो उन्होंने कितनी यानी जमाने में इसार और जज्बा जो इसार और कुर्बानी का जो मुजाहरा किया, और उसके साथ उनसे भी खुदा राजी है। और एक दूसरी आयत पर चलते हैं कि दूसरे सूरह ये बयाना की आयत नंबर
8।
8वीं आयत में
जी
खुदावंद मुताल इस तरह इरशाद फरमाता है कि जो खैरुल बरिया जो
खैर
बेहतरीन इंसान हैं,
उलाइका हुम
उलाइका
खैरुल
हुम
बरिया।
खैरुल बरिया, कि जो
जी
उनसे कहा
बिल्कुल
है कि इनसे भी खुदावंद मुताल राजी हैं।
राजी।
और एक अगली आयत जो तीसरी आयत है कि जो चार मकाम पर मैंने आपके सामने जिक्र किया है कि चार
जी
मकाम पर हैं, और तीसरी जगह ये है कि वो हिज्ब खुदा हिज्बुल्लाह कि जिसे हम कहते हैं लश्कर खुदा,
खुदा के लश्कर मुशमार।
जो अल्लाह के साथी हैं, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हिज्बुल्लाह अला इन्ना हिज्बुल्लाही हुमुल मुफ्लिहुन। कितनी प्यारी बात है
बहुत ही
कि
खूबसूरत।
देखें वो जो हिज़्ब खुदा हैं उनसे जो है खुदावंद मुताल राज़ी हैं, और चौथा मकाम यही उन सादिकीन के लिए है कि जो है खुदावंद मुताल इनसे राज़ी
जी
हैं। और
जी
इस
मैं
तरह
यहीं पर आपसे ये पूछना चाहूंगी खनिसा साहिबा, देखिए कि आयमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए आइडियल है, यानी उसवाए हसना
बेशक
है। जो काम वो अपनी ज़िंदगी में अंजाम दे चुके हैं, जो काम उन्होंने अंजाम दिए थे, या जो बयानात उन्होंने हम लोगों के लिए इरशाद फरमाए थे, अगर उनकी निगाह में आप हमें बताना चाहें कि खुद आयमा मासूमीन अहादीस की रोशनी में, अहादीस नबवी की रोशनी में बताएं कि किस तरह सिद्दाकत और सच्चाई की अहमियत क्या है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
सवाल बहुत अच्छा है। जिस तरह हम जैसे आप चलते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे
जी जी
हैं, जैसा कि पहले सदाकत के मायने हमने बयान किए, अब इसके बाद जब आयत के
जी
थ्रू
जी
से हमने बयान किया, उसके बाद हम चलते हैं रिवायत और अहादीसों की जानिब,
जी
कि हम देखते हैं यूं तो वैसे ही जो है तमाम आयमों की तरफ जानिब से जो है इतनी रिवायतें मिलती हैं जो जिसमें सच्चाई और सदाकत के बारे में बहुत ज़्यादा ताकीद हुई है। और जो पहली हदीस में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं जो है नकल करूंगी कि इसमें पैगंबर खुदा फरमाते हैं कि ला यस्तकीमु ईमान अब्दिन हत्ता यस्तकीम कल्बहु वला यस्तकीमु कल्बहु हत्ता यस्तकीम लिसानहु। कितनी प्यारी उन्होंने
बहुत ही
बात की है
खूबसूरत हदीस है।
कि किसी बंदे का जो है ईमान कामिल उस वक्त तक नहीं हो सकता कि जब तक उसका जो है कल्ब और उसका जो दिल
उसका
है
दिल जो है
जो वो सालिम ना हो जाए।
जी
और इंसान का दिल जो है उसी वक्त ही सालिम हो सकता है कि जब तक जब उसके जबान से जो है हमेशा सच्चाई
सच्चाई हो,
सच बात उससे निकले,
सच
हमेशा
उगले, यानी
यहाँ
हमेशा सच
हमेशा
बोले
सच का
इंसान।
वो जो है बात है
जी
इजहार करे, सच का जो दामन थामे रखे।
जी
तो यानी देखें आप ईमान, अगर इस हदीस को देखें तो अगर कोई ईमान के लज्जत से जो है बहरामंद होना चाहता है तो वो जो है सच बोले। और बहुत सारे जो लोग ऐसे हैं कि जो नाउज़ बिल्ला अगर वो दुरूक में जो
झूठ
है
बोलते
झूठ
हैं।
बोलते हैं, वो
जी
जो इस बीमारी में मुब्तला हैं,
झूठ
जो
बोलने की बीमारी
हाँ
में मुब्तला
मुब्तला
होते
हैं, जो
हैं।
ज़्यादा बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, तो वो लोग क्या है कि ईमान की लज्जत से बहुत बहरा है और बहुत ज़्यादा दूर है,
दूर
वो
है ईमान
ईमान
की
की लज्जत
लज्जत,
को वो नहीं समझते। जाहिर बात है सबसे पहले तो अगर जब इंसान सच
ईमान
बोलता
की
है तो
मिठास
हाँ
से बहुत
जो
दूर
है
हैं वो लोग।
अल्लाह पर जब इंसान का बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, यकीन होता है रोज़ कयामत के जो है सवालात पर उस हिसाब किताब पर जब इंसान का यकीन होता है तो हमेशा सच बोलने की कोशिश करता है और वो झूठ से दूर रहने की कोशिश करता है। तो यानी अब देखें इसमें यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके ईमान जो है कामिल हो, ईमान तक पहुँचने के लिए ईमान के मरहलों तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को जो है जो सच है वहाँ से आप स्टार्टिंग करें। और आपको एक बात बताते चलूँ खास शुमाला कि यहाँ पर लोग सच और झूठ को यानी बहुत हकीर जो है निगाह से देखते हैं कि हमारी
सच
जिंदगियों
को
में
जी
यानी जो है ये दोनों चीज़ की कोई अहमियत नहीं है। जैसे कि हम बाज़ औक़ात जैसे कि मालो
यानी
दौलत
अगर
की
झूठ बोल लें तो बोल लें, सच बोल लें तो
हाँ
बोलें,
बोल यानी
फर्क
हमारी
नहीं
जिंदगी
है।
में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसी हरगिज़ जो हम जो हमारी सोच
जो
है वो गलत है, वो
सोच
फिक्र जो
सही
हमारे
नहीं है।
जो ये बातें हमारे जहनों में आती हैं ये बात सही नहीं है। क्योंकि सच का जो है कभी इंशाल्लाह अगले आपको
जी
बयान करूंगी मैं आपके सामने कि जो है सच के बहुत सारे फवाइद हैं। जब इंसान अपने सच को अपनी जिंदगी में लेकर आता है तो वाकई में देखता है कि लाइफ बहुत चेंज हो गई है, और जब झूठ बोलता है अगर वो झूठ की तरफ जाता है तो
शायद
इंशाल्लाह
यानी इस तरह जो मैं समझी हूँ आपके बयान से
जी
कि जो है जब इंसान झूठ बोलता है तो वक्ती तौर पर वो अपने आप को खुशी
जी
मुसर्रत
वो
हो
ये
इस तरह
समझ रहा
महसूस
होता है
करता है,
कि जी उसे
लेकिन
ये
वो उसकी
थोड़ी देर की
खुशी
लज्जत के लिए थोड़ी देर
चंद
के लिए
लम्हों के लिए
लम्हों
होती है।
जी
लेकिन अगर
सबको मद्देनजर रखते हुए वो झूठ बोलता है,
जी
झूठ के समझ सहारे आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है कि जो आप जिस चीज की कहते हैं ना जिस चीज की बुनियाद अगर सही ना हो तो
जी
जाहिर बात है वहां पर आप कोई इमारत नहीं खड़ी कर सकते।
जी बिल्कुल
अगर वो इमारत खड़ी कर भी दें तो जाहिर बात है उसने एक दिन तो गिरना
गिर
ही
जाना है
है,
और
तो
टेढ़ी रहेगी वो इमारत,
जही,
क्योंकि उसकी
जही,
बुनियाद ही सही नहीं
सही
रखेगी।
बात है। बस ये इन चीज़ों को हम अपनी जिंदगियों में लेकर आए और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक साथ साथ यहाँ पर एक और हदीस को बयान करते चलूँ
जी
कि
जी
इसमें
बिल्कुल
खुद पैगंबर खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ला तंजुरु इला कसरती सलातिहिम व सियामहिम व कसरत अलहज व ज़कात, उन्ज़ुरु इला सिद्क अलहदीस व अदाए अलअमाना।
अदा माना
देखिए अब इसमें पैगंबर खुदा अब मयार दे रहे हैं हम लोगों को, एक मिलाद जिसे कहते हैं
जी
मयार, कि अगर आप
किसी को
किसी का
जांचना
आजमा,
चाहते
हाँ जी,
हैं,
आप किसी की
जी
आजमाइश करना चाहते हैं, किसी का इम्तिहान लेना चाह रहे हैं कि आप
किसी की जांच पड़ताल
हाँ
करना
जी,
चाह
भाई
रहे
वो
हैं,
इंसान
देखना
किस
चाह रहे हैं वो
तरह
किस
है,
तरह का है।
उसकी हकीकत को आप जानना चाह रहे
जी
हैं,
बिल्कुल
तो आप यहाँ पर एक जो है एक मैयार दिया है पैगंबर खुदा, फरमाते हैं कि जो है आप ये देखें कि उसके अंदर सिदाकत और सिदाकत कि जो एक ये जो है
यानी आप
फजीला
लोग उसकी
के अंदर
न
सिदाकत को देखें और अमानत की अदायगी वो किस तरह कर रहे हैं, इस चीज को देखें, और इस चीज को ना देखें कि वो कितनी नमाजें पढ़ रहे हैं। अमूमन हमारे उसमें माशरे में ये बहुत ज्यादा है कि हम लोग ये देखते
समझ
हैं कि अगर हाथ में अगर तस्बीह
कस्बी
हो,
है, मुसल्ले पे खड़े
मुसल्ले
हैं,
पर ज्यादा
रोजा
ज्यादा
रख रहे
हाँ ज्यादा
हैं,
ज्यादा अगर
तो
उन्हें
वो
हाथ,
बहुत बाईमान शख्स
बहुत
है।
बाईमान शख्स है, लेकिन ऐसा जो है बिल्कुल हट कर ये जो है बात पैगम्बर ने जो है ये हमारे सामने जो ये बात है
बयान
वो
किया है
बयान
कि
किया कि
यानी उसकी
जो
नमाज, उसके रोजों को आप ना देखो, उसके लंबे सजदों को ना देखो, बल्कि उसको देखो कि आया वो सच बोलता
कितना
है
सच बोलता है वो जो
और
है अमानत की
अमानतों को
अदायगी
अदा
में
करता है।
करता है या
जी
उसमें
बिल्कुल
खयानत करता है। और खुसूसन यहाँ पर एक और बात बताती चलूँ कि वो लोग जो दोस्ती करना चाहते हैं, ये
जी
जो है दोस्ती और दोस्त एक बहुत अहम मौजू है कि जिसमें जब इंसान एक दोस्त इंतखाब करना चाहता है तो क्या है, हमने बहुत सारे
साथी
अहादीसों
इंतखाब करना
में
चाहता है। जी
बहुत सारे अहादीस में कि जो
जी
खुसूसन अमीर मोमिनीन से बहुत ज्यादा हदीस है
एक्सक्यूज
कि
मी खैरनिसा साहिबा, यहीं पर हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आपसे आपके सवाल का जवाब सुनते हैं।
हाँ
नाजरीन जाइएगा नहीं, रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको अपने घराना प्रोग्राम में मोस्ट वेलकम और खैर मकदम पेश करती हूँ। तो आइए अपनी मेहमान से आप जो सवाल हम कर रहे थे उसका जवाब कंप्लीट करते हैं। जी मोहतरमा खैरनिसा साहिबा, जो अभी आप बता रही थी अहादीस की रोशनी में सिदाकत और सच्चाई की अहमियत के बारे में आप बयान कर रही थी, उसी के बारे में थोड़ा सा और जो अगर आप बयान करना
हाँ
चाहें तो
जी, अभी जो हम मैंने आप लोगों के सामने जो आपके
हदीस
सामने
जो
जो
चल रही
हदीस
थी
जी
रसूल
बयान की,
खुदा की।
इसमें रसूल खुदा ये फरमा रहे थे कि अगर आप किसी को से आप
जांचना
दोस्ती करना
चाहते
चाहते हैं, किसी को आप किसी को आजमाना चाहते हैं, किसी को अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, अपनी जिंदगी इसके साथ शेयर करना चाहते हैं, अगर आप उसको सबसे पहला जो स्टेप ये होगा कि आप उसे आजमाएं फिर अपनी जिंदगी में लेकर आए, तो आज किसी की आजमाइश के लिए वो ये है कि आप उसके जांच पड़ताल करने के लिए आप उसे देखें कि देखें वो जबान, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ये बात बताते चलूं कि जब उन्हें हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा नमाज पढ़ने की वो ये
शायद
उनकी
उसकी आदत
आदत
बन
में
गई
जी
होगी
जी
नमाज पढ़ने
वो
की,
उनकी
रोजे रखने की।
हाँ
इंसान जब एक
होते
इंसान प्रॉपरली काम एक काम को शुरू
जी
करता
जी
है तो उसकी
ऐसा ही
आदत सी
होता
बन
है।
जाती है, वो आदत से मजबूर होकर फिर उसको खान का
हाँ
वो
वो
काम करना ही
कंटिन्यू होते
पड़ता है।
हमेशा
जी
अपने उसको लाइफ में से रूटीन में उसकी चूंकि शामिल है तो है वो जो उसकी आदत बन चुकी है, ठीक है, तो अगर हम निगाह करते हैं उसकी तरफ वो एक इसकी आदत है, लेकिन सच बोलना उसकी आदत में शामिल
नहीं,
नहीं है,
यानी
अगर
उसने
हम
उसने अपनी आदत बनाई ही नहीं है सच
नहीं
बोलने
अभी
की।
तो अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो कितना अच्छा और नेक इंसान है, उसकी हकीकत को जानना चाह रहे हैं, तो अगर आप ये देखें कि वो कितना सच बोलता है, जब
जी
सदाकत जब एक अमली मैदान में वो जो है प्रैक्टिकल लाइफ में वो जब बात के अलावा जब प्रैक्टिकल लाइफ में जब आता है वो कोई अमली मैदान में उतरता है तो वो किस तरह जो है अपनी जबान की हिफाजत करता है, कंट्रोल करता है, आया वो झूठ बोलता है या नहीं, या वो सच का
सच
भी
बोलता है।
मुजाहरा करता है या नहीं,
जी
इन चीज़ों को देखें। और एक हदीस जो अमीर मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सिद्क और रासुद्दीन, जो है सिद्क और राजकुई
सच्चाई
सच्चाई जो है
जी
दीन की बुनियाद है, जिस तरह के हमने ये देखें कितना कितनी प्यारी बात
जी
कि हमने ये अक्सर बहुत कम लोगों ने सुना होगा कि जैसे हम ये तो बात बहुत मशहूर है कि जो है नमाज है दीन का सुतून है,
जी बिल्कुल
ये हमारे यहाँ सबके छोटे बच्चे बच्चे से अभी आप पूछ लें उसकी जबान पर ये बात है। लेकिन हाँ जैसा कि अस्सलातु इमादुद्दीन के हमने
जी
नाम से बहुत सुना है, लेकिन ये हदीस हमारे कानों तक शायद अब तक बहुत कम लोग तो
जी
होंगे जो उनके कानों तक ये बात पहुंची होगी। सिर्फ जो है सच्चाई जो है
सच
वो
बोलना जो है
दीन की बुनियाद है, यानी हमारे
उससे
दीन में
पहचाना जाता है कि ये
कि
इंसान, इसका
वाकई में
दीन क्या है,
दीन
दीन
कैसा है और
इस्लाम पर है
ये मुसलमान है मोमिन है और कितना
जी,
जो है ये जो अपने
अपने ईमान
दीन
पर
का जो है
पायबंद है
पाईबंद है
जी
जी,
बिल्कुल
और अपने जिस तरह जो तालीमात जो अगर जिस पर जो तालीमात दी गई है आइमों की तरफ से या पैगंबर की जानिब से जो आई है जो इस्लाम जो जो तालीमात दी गई है उस पर कितना अमल
इस्लामी तालीमात पर कितना
कितना
पूरा
अमल
उतरा है वो।
करने वाले
जी जी
हैं।
बिल्कुल जी। खैर उस्ताद साहिबा, मैं यहीं पर आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी कि अक्सर जब हम माशरे में देखते हैं, क्योंकि हमारा अक्सर सरोकार माशरे में आम
जी
लोगों के साथ इतना बैठना मिलना जुलना है, इसमें अक्सर जब हम देखते हैं लोगों में माशरे में जब निगाह दौड़ाते हैं तो लोग जो है हमेशा कुछ, यानी एक कैटेगरीज के लोग हमें नजर नहीं आते, यानी
बेशक
कुछ लोग होते हैं जो हमेशा सच बोलते हैं और कुछ लोग होते हैं जो सच बोलने से कतराते हैं,
जी,
और ये क्या वजह है, किस वजह से सच बोलने से लोग कतराते हैं?
देखिए सवाल बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत खूबसूरत सवाल है कि आप हमारे माशरे में देखें ये जो है झूठ का जो रुझान वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत बढ़
बहुत
रहा
बढ़ रहा है
जो है, लोग जरा से अपनी जान बचाने के लिए फौरन से जो है
झूठ
झूठ बोल
बोल
देते
देते
हैं,
हैं।
झूठ का सहारा फौरन से ले लेते हैं। तो ये चीज़ जो है अमूमन वो लोग ज़्यादा करते हैं कि जो जिनके अंदर जो है एतमाद बिनफ्स जिनके अंदर नहीं होता, या क्योंकि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस
जी बिल्कुल
जिनके अंदर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, अमूमन ऐसे अफराद जो है फौरन से जो है झूठ का सहारा लेते हैं। वो जो है आगे बढ़ने के लिए जो कोशिश करते हैं कि जो अपने आप को अच्छा दिखाएं और बहुत ज़्यादा जलवा हो उनका, तो वो उस चीज़ को फौरन से वो झूठ का सहारा लेते हैं और सच से घबराते हैं। और एक वजह ये भी है कि अमूमन जब लोगों के दिलों में जब दूसरों के लिए जो है कीना बोस या दूसरों को हकीर समझना इस जैसी जो रजील जो है बीमारियां हैं
जी
जो अगर इंसान के दिल में बहुत ज्यादा हो जाए, तो मैं ऐसा करूंगी देखें मिसाल के तौर पर अगर खुदा नखास्ता ऐसा हो कि मेरे दिल में जो है सामने वाले के लिए जो है बुग्ध हो, तो अब मैं ये करूंगी जाहिर बात अपने दिल का जो बड़ास जो है खत्म करने के लिए उसे खाली करने के लिए सामने वाले के खिलाफ जो है मैं झूठी झूठी बातें करूंगी। वो अमूमन बस इंसान जो है एक तो यह कीना जिसके अंदर जब जितना ज्यादा हो जाता है उसके अंदर कीना बुग्ध की वजह से जो है बहुत जो है झूठ की तरफ जाते हैं, सच बोलने से घबराते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की इंसान के अंदर जब कमी हो जाती है। और दूसरी बात ये कि शुजाअत और शहामत की कमी, जहां पर हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर थोड़ी जो है हम बोल नहीं सकते। देखिए अमूमन इंसान जब अपने से जो छोटे पोस्ट के जो लोग होते हैं अपने से जो कमतर लोग होते हैं उसके सामने फौरन से बात कर देते हैं क्लियर कर देते हैं, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि मेरे सामने जो मेरा मुखातब है कि वो एक ऐसा शख्स है कि जो बहुत ही बड़े अच्छे पोस्ट पर है जिसका जो है अच्छे उस पर ओहदे पर है और या माल और दौलत के हवाले से भी बहुत सारे लोग थोड़ा सा ये फर्क कायल कर देते हैं कि भाई सामने वाला बहुत ज्यादा अमीर इंसान है या दौलतमंद है, इस चीज़ को भी मद्देनजर रखते हैं। तो जब अब हम ये देखें कि मुझे आपके सामने देखें सच बोलना है, अब वो यही सच है आपके खिलाफ भी हो, तो मैं फौरन से घबरा जाती हूँ कि नहीं भाई मैंने तो ये बात इनके सामने नहीं
इनके
करनी है।
सामने नहीं करनी
तो अमूमन जो है शुजात की कमी होती है इंसान के अंदर, वो जो शहामत जो इंसान के अंदर होने चाहिए उस कमी के बायस जो है इंसान जो है झूठ का सहारा लेता है। और एक ये बात भी बताते चलूँ कि अमूमन जो लोग झूठ इस वजह से भी बोलते हैं और सच बोलने से इस वजह से भी घबराते
कतराते
हैं कि
हैं
उसके अंदर खुद इतने ऐब होते हैं कि वो अपने एवों को
छुपाने
छुपाने
के
के
लिए
लिए
झूठ का
ठीक है
सहारा
झूठ
लेते
का
हैं।
सहारा लेते हैं। ऐसा होता है ना कि जैसे अगर मैं बिलफरत आपके सामने जो है सच बोल दूं तो आप क्या करेंगे जो है मेरे खिलाफ वो जो है आप मेरी सारी बुराइयां मुझे बता देंगी कि भाई आपके अंदर भी इतनी इतनी सारी बुराइयां हैं, ये जो है खुलकर मंजर आम पर आ जाएगी। जो मैं अपने एवों को छुपाने के लिए 100 बातें ऐसी करूंगी ताकि मेरा ऐब छुप जाए और किसी के सामने वो जाहिर ना हो, बस ऐब को पोशीदा करने के लिए। और
ये
एक बहुत अहम बात जो मैं आपकी बात को थोड़े कतः कर रही हूँ,
नहीं
माफी
कोई
चाहती हूँ
बात
आपसे, कि जो है देखें खुदा पर ईमान और रोजे कयामत जो है रोजे जजा है उस पर ईमान में जब कमी आ जाती है तो इंसान झूठ का सहारा लेता है। जब आपको जब किसी के सामने भी इंसान ने सच बोलना हो लेकिन हमें ये इस बात का यकीन हो कि अल्लाह हमारे साथ है, इन्ना अल्लाह मअना, अल्लाह अगर हमारे साथ है और हमारे रसूल आयमा हमें देख रहे हैं, हमने अपना वजीफा अदा किया है, हम अपने वजीफे की अदायगी कर रहे हैं, और कल वो कयामत के दिन जब रोज़े महशर जब हिसाब किताब का दिन होगा, जब हम उस चीज़ को अगर मद्देनजर रखें तो हम यह जो है सच बोल सकते हैं। और लोगों के अंदर जो ईमान की कमी हो जाती है अमूमन इस वजह से भी जो है वो सच बोलने से कतराते हैं। मैं यहीं पर ही एक पैगंबर खुदा की जो है हदीस बयान करती
जी
चलूँ
बिल्कुल
कि किसी ने रसूल खुदा से पूछा कि वो कौन सा अमल है कि जिससे इंसान बेहश्ती हो जाए, वो कौन सा अमल है कि जिससे इंसान
जिसको
बेहश्ती हो
अंजाम देने से
जाए,
इंसान
इंसान
बहिष्ट हो
बेहश्त हो
जाए।
जाए, बेहश्त में जाए।
जी
और हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि जो
जी
इंसान जो है वाकई में
वो
दुनिया में भी सुरखरू हो जाए, कामयाब हो और आखिरत में बहिश्त में जाए। जाहिर बात है जब अल्लाह का कोई नेक बंदा ही होगा तो वो बहिश्त में जाएगा उसे,
जी बिल्कुल
इस बात पे तो हमें खुदा का हमें यकीन है। तो आप रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि सच बोले, उसे कहो कि वो सच बोले, अगर वो सच बोलेगा तो बहिश्त
बहिष्ट
में
में
जाएगा।
जाएगा।
तो अभी इसके आगे जो है पैगंबर खुदा फरमाते हैं क्योंकि जब वो शख्स सच बोलता है तो वो नेकुकार बन जाता है, वो नेकी अंजाम देता है। जब वो नेकी अंजाम देता है, नेक काम करने लगता है, नेकुकार शख्स बन जाता है, तो उसका अगला स्टेप ये होता है कि वो ईमान लेकर आ जाता है। फिर उसके बाद ईमान के बाद जो अगला स्टेप होगा, जाहिर बात है जब हर इंसान ने इस दुनिया से जाना है, मौत जो बरहक है,
जी बिल्कुल
तो मौत के बाद जो जाहिर बात है जब इंसान ईमान के साथ इस दुनिया से जाए तो मालूम है कि वो
दुनिया में भी
हाँ
सुरखुरू
और
और आखिरत में
बहेश्त
भी।
में इंशाल्लाह।
जी
और इसके बाद अगर जो है वही शख्स एक मतलब फिर सवाल करता है कि या रसूल अल्लाह आप बताएं कि वो कौन सा अमल है कि जिससे इंसान जो है दोजख में जाएगा, यानी उसे जहन्नम के उसे आतिश में उसे
नसीब में लिखी
जलना
जाएगी।
ली। ठीक, तो आप फरमाते हैं कि वो अगर झूठ बोले, अगर कोई शख्स झूठ बोलेगा तो वो क्या हो जाएगा, जाहिर बात है वो इस तरह ऐसा एकदम जैसे हमने कहा कि बहुत सारे जो है गुनाहों की जो है कलीद और कुंजी जो है वो झूठ
जी
है।
तमाम
हाँ जी,
गुनाहों की बुराइयों की चाबी जो
हाँ
है
जो
वो
चाबी
झूठ
जो
है।
है झूठ है। अगर वो इसी स्टेप को जब वो उठाता है तो आगे बहुत सारे गुनाहों में भी वो मुब्तला हो जाता है। जब वो जाहिर बहुत सारे गुनाह वो अंजाम देगा, वो खुदा को भूलेगा, तो आखिर में वो काफिर हो जाएगा, और काफिर होने के बाद जाहिर बात है काफिर का
दुनिया
जो
भी खराब करेगी
अंजाम
और
जो है वो
आखिर।
दोजख ही
जी
है। तो यानी अब बहुत सारी चीजें जो मैंने आप लोगों के सामने जो बयान
जी
की
मैं यहाँ
कि
पर एक्सक्यूज मी खैर साहब, मैं ये पूछना चाहूंगी कि अब एक इंसान है वो उसने झूठ बोलने को अपना वतीरा बना लिया है, हमेशा
जी
झूठ बोलता है, तो इसके अगर हम रीजन को देखें कि इसका रीजन क्या हो सकता है, किस वजह से वो झूठ बोलता है, आया इसके तरबियत में कोई कमी रह गई थी कि जिस वजह से झूठ बोलता है, तो अगर इसके बारे में आप थोड़ा सा बता दें कि वालिदैन को क्या चाहिए, यानी आप वालिदैन को क्या यहाँ पैगाम देंगी कि वो अपने बच्चों की किस तरह तरबियत करें कि वो हमेशा सच बोलें, या अगर अक्सर लोग हम देखते हैं कि जब माशरे में देखते हैं कि कोई दरवाजे पर आया है,
ये कह देते
वालिदैन
हैं कि देखे
जी
उनसे कहो दो कि बाबा घर पर नहीं
घर पर नहीं है,
है।
यानी
जी
खुद
जी
ही, और बच्चे हमेशा सच ही बोलते हैं, बच्चे कहते हैं कि बाबा कह रहे हैं मैं घर पर नहीं हूँ,
जी
तो ये
ये अमूमन बहुत देखने में आया है, इस
जी
तरह के वाकयात बहुत सारे पेश आए हैं कि
एक्सक्यूज
जैसे
मी खान साहब, यहीं पर
जी
छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन जाइएगा नहीं, रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
قد رحت أنظم حبا سامقا ألقا مذ لامس الحرف وردا طوع الأفقا واستعذب الحبر أن يلقى ثريا هوى وأن يعانق ريحان العلا العبقا وتلألأت قسمات الطير في رغد إذ داعب النور تيها ما به صفقا Thank you.
ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو اپنے گھرانہ پروگرام میں موسٹ ویلکم اور خیر مقدم پیش کرتی ہوں, اور اپنے سوال کا محترمہ خیر النساء صاحبہ سے اپنے سوال کا جواب دوبارہ سے پوچھتے ہیں. جی خیر النساء صاحبہ, یہیں پر ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ ریزن کیا ہے, کس وجہ سے جو ہے بچے جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں, کیا اس کو گھر سے اس کی تربیت صحیح نہیں ہوتی, یا والدین باعث بنتے ہیں, یا اس کی جب وہ اسکول کالجز میں جاتا ہے وہاں سے وہ جھوٹ بولنا سیکھتا ہے, اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سی وضاحت کر دیں.
بہت اچھا اور خوبصورت سوال ہے کہ دیکھیں بچے کی جو تربیت ہوتی ہے, تربیت کے حوالے سے بھی اور بہت سارے آپ کے پروگرامس وغیرہ ہوئے ہوں گے, اور اس حوالے سے بیان کرتے چلوں کہ جب بچہ جو ہے اس کے لیے جو پہلی اور اولین جو تربیت گاہ ہے وہ اس کا گھر ہی ہے, اور ہم نے روایتوں کے مطابق جو ہے وہ جو ہے ماں کی گود اور ماں کا جو دامن ہے اسی سے بچہ جو ہے تربیت پاتا ہے. اگر بچے کی خاص توجہ اور جو ہے تربیت کے حوالے سے اگر گھر میں جو توجہ دی جائے تو اس طرح یعنی وہ جو ایک جھوٹ کی جو عادت ہے اس کو گھر سے ہی اگر روک لیا جائے, ختم کر دیا جائے, تو یہ پروان نہیں چڑھے گا.
یعنی والدین بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بولیں, ان کو سچ بولنے کی تربیت, اس طرح
تربیت
اپنے عمل سے بتائیں.
اب سب سے پہلے تو وہ اپنے کریکٹر کے ذریعے سے, ظاہر بات ہے جس طرح کہ ہم ایک حدیث کے مطابق کہ لوگوں کو جو ہے آپ اپنی زبان سے دعوت مت دو بلکہ آپ اپنے کردار سے, آپ اپنے عمل سے جو ہے جو لوگوں کو دین کی جانب دعوت دو. تو اسی طرح آپ ظاہر بات ہے جو بچہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ مسلسل وہ سیکھ رہا ہوتا ہے, ظاہر بات ہے سیکھنے کا اس کا ٹائم ہے کہ وہ اس کا جو پہلے جو جو اس کے ٹیچرز جو ہیں یہی پیرنٹس ہیں, یہی والدین ہیں جو اس کے ٹیچرز ہیں, جو اس کے استاد ہیں جن سے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. اگر وہ اپنے والدین کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے جھوٹ بول دیتے ہیں, اور فوراً سے جو ہے چھوٹی جگہ ٹیلی فون جسے فون کی جو بیل بجتی ہے اسے کہو کہ نہیں 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 یہاں پر بابا نہیں ہے, یہ فوراً
ماما
گھر پر نہیں ہے, تو یہ سکھا دیتے ہیں تو بچے جو ہے
آہستہ
آہستہ آہستہ آہستہ وہ ظاہر بات ہے خود بخود جو ہے چیز ایسا ایک ٹائم پیریڈ ہے بچپن جو ہے جسے کہتے ہیں کہ جس میں وہ خود بخود وہ سیکھ رہا ہوتا ہے, ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, پک کر رہا ہوتا ہے.
یعنی بچے کے یوں سمجھے کہ بچے کا دل جو ہے وہ ایک زرخیز زمین کی مانند ہے کہ جو بھی آپ اس میں
جس طرح آپ یاری اس میں
جب آپ کر رہے ہیں آپ پھر وہی کل سے پھل
ہے, بچے آج کہتے ہیں نا جو آج آپ بو گے وہی کل کاٹو گے, وہی والی مثال ہے کہ جو جس طرح آپ اس کی تربیت کر رہے ہیں آپ جو سکھا رہے ہیں اسے جو خصوصاً یہاں پر پیرنٹس کا بہت زیادہ اہم رول ہے کہ وہ یہاں پر کس طرح اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں, جس پر خاص نگاہ رکھیں. اور ظاہر بات ہے کل پھر اس کے بعد جو دوسرا جو ہے والدین کے ساتھ ساتھ اب جب بچہ تھوڑا جب بڑھتا ہے تھوڑا جو آگے جب اس کے جب اتنی عمر پہنچ جاتی ہے جب وہ اسکول جانے لگ جاتا ہے تو اس کے میری نظر میں یہ جو بہت اہم چیز میری نظر میں کیا بلکہ تمام روایتوں کے بھی مطابق جو ہے ہمارے اہموں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو دوست جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ کیس کے کیسے دوست ہیں, کس طرح کے دوستوں کے ساتھ وہ رہ رہا ہے آج کل, اس کی وہ کس طرح کی گیدرنگ ہے, اٹھنا بیٹھنا کون ہے جو ہے کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, ان تمام چیزوں پر والدین کو جو ہے کڑی نگاہ ہونی چاہیے, اس سے فوراً سے وہ اسٹیپ لیں. اگر جو ہے شروع سے شروعات اگر اچھی ہو وہ جو ہم نے بات ابھی کہی تھی کہ جو ہے جو پہلا جو اسٹیپ جو اگر انسان کی جو بنیاد اگر اچھی ہو جائے تو انشاءاللہ بچہ جو ہے آگے پروان چڑھے گا.
میں یہاں پر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اب انسان سچ بولتا ہے تو اس کے سچ بولنے کہ زندگی انسان کی زندگی پر کیا اثرات پڑتے ہیں, یعنی اب آپ نے کہا ہے کہ ہمیشہ انسان کو سچ بولنا چاہیے, اور خود بھی روایات آیات اور حدیث سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ انسان جو ہے ہمیشہ سچ بولے. اب کچھ لوگ ہیں جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں, تو میں اس کے بارے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب انسان سچ بولتا ہے تو اس کی انسانیت پر اس کی انسانی زندگی پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے, اس کے اثرات کے بارے میں اگر آپ بتا دیں.
بہت ہی اچھا سوال ہے کہ جہاں پر لوگ ہمارے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ جھوٹ کا رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے انسان کی جان بچ جائے گی اور کچھ تھوڑا سا نفع اور منافع انسان کو حاصل ہو جائے گا, وہیں پر یہ بات بتاتے چلیں کہ دیکھیں ہر جھوٹ میں سوائے رسوائی ذلت خواری کے اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب انسان سچ بولتا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے اطراف میں جو موجود افراد ہیں اس کو اپنے اعتماد میں لیتے ہیں.
جی بالکل,
کہ دیکھیں انسان جو ہے اب جیسے کہ ایک مغربی فلاسفر نے یہ بات کہی تھی کہ مین از اے سوشل اینیمل, کہ جو ہے انسان ایک معاشرتی جانور ہے, اور جس طرح محمد حسین طباطبائی جو تفسیر المیزان کے رائٹر ہیں انہوں نے یہ بات کہی تھی, علامہ طباطبائی یہ فرماتے ہیں کہ انسان مدنی تب ہے
جی بالکل،
کہ جو ہے وہ انسان معاشرے میں رہتا ہے، انسان کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے،
اجتماعی
زندگی ہے، ظاہر بتا آج مجھے ضرورت پڑی ہے تو کل کو آپ کو مثلا، اس طرح ہر انسان جو ایک دوسرے سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، ایک دوسرے کے انسان کام آتے ہیں، تو یہاں پر ایک چیز جو بہت ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو انسان کے اوپر جو ہے ٹرسٹ ہو، جیسے مجھے آپ پر ٹرسٹ ہو، آپ کو مجھ پر اعتماد ہو، اور ایک اطمینان والا جو ہے ایک ماحول ہونا چاہیے. یہ اطمینان والا ماحول اور یہ خوبصورت ماحول جب ہی حاصل ہو سکتا ہے کہ جب ہاں انسان سچ بولے. تب کہ ابھی اگر ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ایک دفعہ جب انسان میں جھوٹ بول دوں گی، ٹھیک ہے شاید ایک دفعہ آپ کا کام ہو جائے گا، دوسری دفعہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کام ہو جائے، لیکن تیسری دفعہ ہر بار یہ ہم یہ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ دیکھیں اب ہر بار جب میں جھوٹ بولوں گی ہر بار میرا کام ہو جائے گا. دیکھیں جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو ہے آہستہ آہستہ ظاہر بات ہے وہ کھل کر منظر عام پر آ جاتی ہے اور سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان جھوٹا ہے اور کتنی مرتبہ اس نے جھوٹ بولا ہے، تو ظاہر بات ہے لوگ آپ پر اعتماد نہیں کریں گے. یہ چیز ایسی ہے نا کہ جب اعتماد ختم ہو جائے تو ظاہر بات ہے آپ کے جو تحت نظر آپ کے جو لوگ ہیں، بالفرض آپ دیکھیں
کہ ارد گرد رہنے والے لوگ، آپ کی فیملی کے لوگ،
جیسے کہ آپ کسی بھی ادارے میں جو ہیں، آپ آفس میں ہیں، جو آپ وہاں کے مدیر ہیں، وہاں کے آپ پرنسپل
ہیں، وہاں کے ہیڈ جو ہیں،
آپ ہیڈ ہیں، کوئی اونر ہیں، مینیجر ہیں، آپ جس پہ بہرحال جس پوسٹ پر بھی ہیں، جس مقام پر بھی آپ ہیں، کہ جو آپ کے جو نیچے تحت نظر جو آپ کے افراد ہیں، جو آپ سے نیچے جو پوسٹ پر جو لوگ ہیں، ظاہر بات ہے وہ ایک دفعہ آپ کی بات مانیں گے، دوسری دفعہ بات مانیں گے، جو آپ کی جو ایک مقام جو ہے آپ جو ان کے دل کی نظر میں یا جو ان کے دل میں جو جگہ ہے، وہ آپ جھوٹ بول کر آہستہ آہستہ وہی اپنا مقام
ہو جائے گا، خود
آپ اپنے ہاتھوں سے وہی آپ اپنے جھوٹ کے ذریعے سے جو آپ ختم کر دیں گے. اور برعکس آپ جتنا آپ لوگوں کے ساتھ سچ بولیں گے، جتنا آپ صداقت سے کام لیں گے، جتنا آپ رازگوئی کے ساتھ جو ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے بات کریں گے، تو اس کا نتیجہ بھی یہ ہوگا کہ لوگ آپ پر ٹرسٹ کریں گے، اعتماد کریں گے، آپ کے ارد گرد افراد جو ہے بہت زیادہ ہو جائیں گے. اس طرح یہاں پر مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کے سامنے نقل کرتے چلوں کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ الصدق صلح کل شیء والکذب فساد کل شیء.
جی بالکل،
کہ صدق اور صداقت
سچائی
جو ہے وہ ہر چیز کی جو ہے وہ اصلاح کا سبب بنتا ہے، اور جو ہے کس جھوٹ جو ہے درگوئی جسے ہم کہتے ہیں وہ جو ہے ہر چیز جو ہے فتنہ، اس کو فتنے کا باعث ہر چیز کے مثلا فساد کا باعث جو ہے وہ جھوٹ ہے. اگر آپ پہلا اسٹیپ جو آپ اچھا اٹھاتے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے آخر تک جو ہے وہ اس کا صحیح اختتام اور اچھا بہت طریقے سے اس کا اختتام ہوگا. تو دیکھیں جب اعتماد کی بات آئی تو یہاں پر ایک حدیث میں نقل کرتی چلوں کہ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک جھوٹا انسان اور ایک مردہ جو ہیں آپس میں برابر ہیں.
برابر
کیوں؟ دیکھیں جب ایک زندہ انسان کو مردے پر کیوں اس کو برتری حاصل ہے کہ خود امام فرماتے ہیں کہ جو ایک معافی چاہتے ہوں مردے کو زندہ انسان پہ اس وجہ سے ہے اس کو برتری حاصل ہے کیونکہ وہ ظاہر بات ہے لوگ اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں، لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، لوگ اس پر اطمینان کرتے ہیں، اس کے ساتھ آتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اسے اپنے غم اس کے ساتھ بانٹتے ہیں، غم اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، یعنی اس پہ مکمل ان کا اعتماد ہوتا ہے. لیکن ظاہر بات ہے جب ایک سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مردہ انسان ہے تو ہم جا کے نہ مجھ سے کوئی گفتگو کرتے ہیں، نہ مجھ سے کوئی بات چیت کرتے ہیں، ظاہر بات
اور اگر بات کریں بھی لیکن وہ ہمیں جواب تھوڑی نہ دے گا.
بالکل جھوٹا انسان ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ اگر سامنے جیسے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مردہ ہے، زندہ حالانکہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے، چلتا پھرتا لاش، آپ یہ بات آپ نے بہت اچھی گئی کہ چلتا پھرتا وہ لاش ہے کہ جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن ہم اس پر ٹرسٹ اعتماد نہیں کر سکتے ہیں، کہ اسی وجہ سے مولا امیر المومنین اس شخص کو جو ہے جھوٹے شخص کو جو یعنی یوں فرما رہے ہیں کہ وہ جو ہے مردے کے مردے برابر ہے، مردے کے جو ہے مردے سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے. یہاں پر ایک اور چیز بتاتے چلوں کہ جس طرح کے جو گھرانہ جو ہے یہ پروگرام ہے اس میں دیکھیں گھر میں خصوصاً میاں اور بیوی کے درمیان ایک چھت کے نیچے ویسے تو بہت سارے افراد زندگی کرتے ہیں، اس میں والدین ہوتے ہیں، پیرنٹس ہیں، ماں باپ ہیں، اور اس کے علاوہ اگر دادا دادی وغیرہ بھی ہیں، بہن بھائی ہیں، میاں بیوی ہیں، بچے ہیں، اور بہت سارے جو ہے جن کی جوائنٹ فیملی ہوتی ہے اس میں بہت سارے افراد ہوتے ہیں. ये घर के एक छत के नीचे जो अफराद जो जिंदगी कर रहे हैं खुसूसन उनके लिए, और उसमें जो है स्पेशली अगर हम देखें मियाँ और बीवी, हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान में जो रिश्ता है वो बहुत ज्यादा देखें ये जो है एतमाद का रिश्ता है बहुत नाजुक रिश्ता और बहुत खूबसूरत रिश्ता के जब तक एतमाद इनके दरमियान में है ये बहुत मजबूती के साथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के रिश्तों को मजबूत कर रहा है। लेकिन जब वो एतमाद अगर खत्म हो जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर बिलफरस शोहर कभी आकर कोई खुदा न खास्ता झूठ बोले, अगर वो जो है बीवी के सामने खुल जाए, ये पता चल जाए बीवी को
कि
इसने झूठ बोला है, तो जाहिर बात है अभी थोड़ी देर के लिए तो वो खुश हो गई थी कि इसने कोई, मैं बिल फर्ज देखें कि कोई ऐसा शख्स हो हस्बैंड जो है बहुत सारी चीजें खरीद के लेकर आ जाए घर पर, अब जो है बीवी तो बड़ी खुश हो गई है कि
जी इंशाल्लाह।
तो यहाँ पर मैं कोई थोड़ा सा खत्म करके लेते हैं स्टेप,
चूंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है इसलिए आप से यहीं से खुदाफ़ी करते हैं, चूंकि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम में इस पर मज़ीद जो है वो गुफ्तगू करें, और आपसे यहीं पर खुदाफ़ी करती हूँ, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन नाज़रीन यहीं पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, और अगले प्रोग्राम तक आपको खुदावंद मुताल की पनाह में देती हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि आपको हमेशा की तरह आज भी हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, और अपनी तजवीज़ात और अपने मशवरे हमें ईमेल और टेलीफोन के ज़रिए भेजते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।